28 जून दिन भर दिन मंगलवार, मैं हूं रेहान फदल। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के फैसले पर संघ के नेताओं के बीच बहस। ब्रिटिश प्रधानमंत्री डेविड कैमरन बोले, NIA अदालत ने मालेगांव बम धमाके माले में जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा की जमानत अर्जी खारिज की। देखेंगे मुजफ्फरनगर दंगों के पीड़ित क्यों भेज रहे हैं अपने बच्चों को मदरसों में।
सरकारी में कोई सुविधा नहीं थी, इस वजह से हमने अपने बच्चे हटा लिए। वहाँ पे बच्चों को बच्चे मारते थे, इस वजह से हमने समझा सेफ हमारे बच्चे वैसे में रहेंगे।
तो यहाँ पर जो क्या क्या पढ़ाते हैं, क्या
जी यहाँ पे उर्दू भी है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब कुछ है।
बात होगी विंबलडन की भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार सुशीला सिंह से। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन के लोगों को यूरोप को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। वे ब्रसल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। ब्रिटेन के जनमत संग्रह में यूरोपीय संघ के बाहर होने के पक्ष में वोट करने के बाद ये उनकी पहली मुलाकात होगी। इससे पहले यूरोपीय संसद में ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से बाहर निकलने की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने पर प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। यूरोपीय कमीशन के अध्यक्ष जॉ क्लॉड जंकर का कहना था कि ब्रिटेन को बाहर निकलने की प्रक्रिया को लेकर अस्थिरता को खत्म करना चाहिए और बिल्ली और चूहे का खेल नहीं खेलना चाहिए। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन का कहना था कि ब्रिटेन यूरोपीय संघ छोड़ने के बाद यूरोपीय देशों से करीबी रिश्ते रखना चाहता है। मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया रचनात्मक होनी चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बैठक के बाद भी रचनात्मक ही निकले, क्योंकि यूरोपीय संघ से बाहर निकलते वक्त हम यूरोप को अपनी पीठ न दिखाएं। ये देश हमारे पड़ोसी, सहयोगी और दोस्त हैं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि सुरक्षा और व्यापार के क्षेत्र में हम करीबी रिश्ते निभाएंगे। ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के शब्द। लेबनान की सेना का कहना है कि सीरिया की सीमा के नज़दीक हुए श्रृंखलाबद्ध हमलों के बाद 100 से ज़्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। इनमें से ज़्यादातर लोग सीरिया के लोग हैं जो अवैध रूप से इस इलाके में रह रहे हैं। सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि 4 हमले अलकौ गांव के में किए गए, जो एक ईसाई बहुल इलाका है। इस हमले में सोमवार को 5 आम नागरिक और 30 लोग घायल हो गए थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने तुर्की की माफी को दोनों देशों के रिश्ते के लिए अहम बताया है। तुर्की ने पिछले साल रूस के लड़ाकू विमान मार गिराने के लिए सोमवार को माफी मांगी थी। पुतिन के प्रवक्ता का कहना था कि बुधवार को तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान से पुतिन फोन पर बात करेंगे, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि दोनों देशों के बीच तल्ख हुए रिश्तों को कुछ दिनों में पटरी पर लाना संभव नहीं है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पुलिस बल में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। एक पत्रकार ने ये रिपोर्ट किया था कि दक्षिणी प्रांत उरुजगन में पुलिस लड़कों को गुलाम बनाकर रख रही है और उनका यौन उत्पीड़न किया जा रहा है। फ्रांस की न्यूज़ एजेंसी का कहना है कि तालिबान बाल पीड़ितों को भर्ती कर रही है और उनका इस्तेमाल पुलिस से लड़ाई में कर रही है। यमन से आ रही रिपोर्टों के अनुसार सऊदी नेतृत्व वाले गठबंधन की तरफ से हुई हवाई कार्रवाई में 25 लोग मारे गए हैं। ये हमला दक्षिणी प्रांत ताइज में हुआ। सुरक्षा बलों के हवाले से कहा गया है कि मारे गए लोगों में से 15 होती विद्रोही थे और अन्य आम नागरिक थे। सऊदी नेतृत्व वाला गठबंधन यमन सरकार का होती विद्रोहियों और उनके सहयोगियों के खिलाफ लड़ाई में समर्थन करता है। बीबीसी समाचार।
दिन भर में अभिवादन स्वीकार करिए रेहान फजल का। यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के बाहर जाने के फैसले के बाद यूरोपीय संघ के नेताओं में बहस छिड़ गई है। कुछ नेता जहां ब्रिटेन के फैसले का स्वागत कर रहे हैं, वहीं कुछ शांत रहने और स्थिरता बनाए रखने की अपील कर रहे हैं, जबकि कुछ नेता ब्रिटेन को जल्द से जल्द तलाक देने की बात भी कर रहे हैं। उनका मानना है कि ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन से जल्द बाहर का रास्ता दिखाए जाने की जरूरत है। आज यूरोपीय संसद की आपात बैठक में प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने स्पष्ट किया कि ब्रिटेन ये तय करेगा कि वो कब अलग होने का औपचारिक फैसला लेगा। ब्रसल्स में आज यूरोपीय नेताओं की हुई आपात बैठक में यूरोपीय संघ के नेताओं ने क्या कहा, बता रही हैं पूजा मेहरोत्रा।
यूरोपीय संघ से ब्रिटेन के अलग होने पर आए जनमत संग्रह के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन की यूरोपीय नेताओं से यह पहली मुलाकात होगी। यूरोपीय संसद की इस आपात बैठक में नेता जनमत संग्रह के परिणाम पर बहस करेंगे। संसद को संबोधित करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन यह स्पष्ट करेंगे कि यूरोपीय संघ से बाहर जाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए ब्रिटेन अनुच्छेद 50 का सहारा नहीं लेगा। साथ ही डेविड कैमरन यह भी स्पष्ट किया कि यह ब्रिटेन का फैसला होगा कि वह कब यूरोपीय यूनियन से अलग होने की औपचारिक प्रक्रिया शुरू करेगा।
In the last few days, I've spoken to Chancellor Merkel, President Hollande, and a number of other European leaders.
पिछले कुछ दिनों में मैंने चांसलर मर्केल, हॉलैंड के राष्ट्रपति और कई यूरोपीय नेताओं से बात की है। हमने बात की है कि किस तरह से हमें आपसी सहमति से इस पर आगे बढ़ना है। इस स्तर पर मैं कह देना चाहता हूँ कि ब्रिटिश सरकार अनुच्छेद 50 पर विचार नहीं कर रही है। इसे करने से पहले हमें यह समझने की ज़रूरत है कि आगामी प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल यूरोपीय संघ से किस तरह का रिश्ता चाहता है।
इस मौके पर फ्रांस की नेशनल फ्रंट की नेता मरीन लेपिन ने कहा कि जनमत संग्रह में आया परिणाम उतना ही ऐतिहासिक है जितना कि बर्लिन की दीवार का गिराया जाना था। उन्होंने आगे कहा कि ब्रिटिश ने एक ऐसा रास्ता चुना है जिसके बारे में कहा जा रहा था कि यह हमेशा के लिए बंद हो गया है। उनमें से आप लोग हैं जिनका मानना है कि सब कुछ समाप्त हो चुका है। वो जो ये सोचते हैं कि यह बदला नहीं जा सकता है या यूरोपीय संघ की वापसी नहीं हो सकती है, तो मैं कहना चाहती हूँ कि ब्रिटेन के लोगों ने बता दिया है कि कहाँ, किसे, कब बाहर का रास्ता दिखाना है। ये जनमत संग्रह प्रजातंत्र की जीत का इशारा है। ये यूरोपियन सिस्टम पर जोरदार तमाचा है जो डर, ब्लैकमेल और झूठ पर आधारित है। ये थे नेशनल फ्रंट की नेता मरीन लेपेन के शब्द। उधर संसद को संबोधित करते हुए जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल ने एक बार फिर संसद में प्रतिनिधियों से कहा कि ब्रिटेन के यूरोपीय संघ से अलग होने के निर्णय का स्वागत करना चाहिए, लेकिन अगर ब्रिटेन भविष्य में मुक्त बाजार चाहता है या लोगों की आवाजाही भी चाहता है, तो हमें उन्हें यह अनुमति देनी होगी।
Die britische Bevölkerung hat sich am vergangenen Donnerstag mehrheitlich dafür entschieden.
पिछले गुरुवार को ब्रिटेन की जनता ने यूरोपियन यूनियन से अपनी सदस्यता खत्म करने के लिए वोट किया, जिसका मुझे खेद है, लेकिन पूरी जर्मन फेडरल सरकार ने इस पर अपनी सहमति जताई है। बहुत खेद के साथ मैं यह कहना चाहती हूँ कि हमें ब्रिटेन के मतदाताओं के निर्णय का आदर करना चाहिए। ये थे जर्मन चांसलर अंगेला मर्केल के शब्द। जबकि दूसरी ओर यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क ने एक बार फिर दोहराया है कि यूरोपियन संघ ने ब्रिटेन को अलग करने की तैयारियों में तेजी लाने की जरूरत है।
यूरोप इज रेडी टू स्टार्ट द डिवोर्स प्रोसेस इवन टुडे।
यूरोप आज बिना किसी उत्साह के ब्रिटेन को तलाक देने के लिए तैयार है। यह ऐसा समय नहीं है जिसके बारे में हम सपना देख रहे थे। मैं साफ साफ शब्दों में कह देना चाहता हूं कि बिना किसी नोटिफिकेशन के ब्रिटेन से किसी तरह का समझौता संभव नहीं है, न तो तलाक के मामले में और न ही भविष्य के रिश्तों के बारे में।
काफी गहमागहमी के बीच यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि अपनी बात रखेंगे। अब देखना यह है कि ब्रिटेन क्या फैसला लेता है और कब अलग होने का फैसला करता है।
यूरोपीय संसद की आपात बैठक। और अब कुछ खबरें भारत से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA की विशेष अदालत ने मालेगांव बम धमाके मामले में जेल में बंद साध्वी प्रज्ञा की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साध्वी की जमानत अर्जी पर सुनवाई पिछले सप्ताह ही पूरी हुई थी। साध्वी प्रज्ञा सिंह पिछले 8 साल से मालेगांव बम धमाके के आरोप में जेल में है। मामले की जांच कर रही NIA ने इस साल दायर अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में साध्वी सहित 6 आरोपियों को क्लीन चिट दे दी थी। उसी के बाद साध्वी के वकील ने जमानत की अर्जी दी थी। अश्विन अघोर की रिपोर्ट।
वर्ष 2008 में नासिक जिले के मालेगांव में हुए बम धमाकों की मुख्य अभियुक्त साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जमानत अर्जी मुंबई के विशेष NIA अदालत ने ठुकरा दी है। इस धमाके में 8 लोगों की मौत हुई थी और 101 लोग घायल हो गए थे। इस मामले की जांच कर रही NIA ने पिछले महीने की 13 तारीख को अदालत में पूरक चार्जशीट दायर कर साध्वी प्रज्ञा सिंह तथा अन्य 5 अभियुक्तों पर लगा मकोका हटा दिया था। इसके बाद 30 मई को साध्वी प्रज्ञा सिंह के वकील प्रशांत मग्गू ने उनकी जमानत अर्जी अदालत में दायर की थी। अर्जी में साध्वी की ओर से यह दलील दी गई थी कि चूंकि इस मामले की तफ्तीश शुरू होने की वजह से भले ही इसके पहले जमानत अर्जियां खारिज कर दी गई थी, लेकिन अब जबकि उन पर से मकोका हटा दिया गया है, साध्वी जमानत की हकदार है। अर्जी में इस बात पर भी जोर दिया गया था कि वह पिछले कई सालों से जेल में है। महाराष्ट्र के आतंकवाद विरोधी दस्ते ने साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ 2009 में चार्जशीट दायर की थी। मालेगांव धमाके में साध्वी प्रज्ञा सिंह का नाम तब आया जब यह पता चला कि धमाके में इस्तेमाल मोटरसाइकिल उनकी थी। जब यह मामला NIA को सौंपा गया तब उसकी तफ्तीश में यह बात सामने आई थी कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के खिलाफ मकोका लगाने के लिए पुख्ता सबूत नहीं है। एजेंसी द्वारा दायर पूरक चार्जशीट में यह भी कहा गया था कि उनकी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी और एक फरार मुजरिम उसे इस्तेमाल कर रहा था। मालेगांव के व्यापारी निजार अहमद ने 17 जून 2016 को साध्वी के जमानत का विरोध करते हुए विशेष NIA अदालत में एक इंटरवेंशन एप्लीकेशन दायर की थी, जिसे विशेष जज SD टेकाले ने जायज ठहराते हुए एक्सेप्ट किया था। इसके बाद 8 जून 2016 को निसार अहमद ने एक और अर्जी कर यह मांग की थी कि NIA द्वारा दायर चार्जशीट खारिज की जाए। निसार अहमद का कहना था कि यह चार्जशीट राजनीतिक हेतु से प्रेरित थी और ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त की मदद करने के लिए सरकार द्वारा बनाई गई है ताकि उन्हें जमानत पर जेल से बाहर आने में आसानी हो।
ये थी अश्विन अखोर की रिपोर्ट। भारतीय कश्मीर में पंपोर में हुई मुठभेड़ के बाद, जिसमें 2 पृथकतावादी और 8 CRPF के जवान मारे गए थे, CRPF और सेना के बीच इस बात की होड़ लग गई है कि पृथकतावादियों को किसने मारा। CRPF की तरफ से कहा जा रहा है कि सेना इसका श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। श्रीनगर से माजिद जहांगीर की रिपोर्ट।
बीती शनिवार को दक्षिणी कश्मीर के पापोर में आत्मघाती हमले में 2 चरमपंथियों को मारने को लेकर सेना और CRPF के अलग अलग बयान सामने आ गए हैं। हमले के पहले दिन सेना की उत्तरी कमान ने ट्वीट कर इस बात का दावा करते हुए लिखा था, हमले में मारे गए चरमपंथियों को सेना की कार्रवाई में मारा गया। खबरों के अनुसार सेना के इस ट्वीट के बाद CRPF के अधिकारियों ने सेना के दावा पर एतराज किया, जिसके तुरंत बाद सेना ने अपने दूसरे ट्वीट में लिखा, पापोर हमले में जॉइंट ऑपरेशन के दौरान 2 चरमपंथियों को मारा गया। CRPF के लगातार एतराज के बाद सेना ने तीसरे ट्वीट में अपने पहले वाले दोनों ट्वीट्स को बदलते हुए लिखा, दोनों चरमपंथी CRPF की जवाबी कार्रवाई में मारे गए और पहले वाले ट्वीट को दुरुस्त किया गया है। इस सिलसिले में जब हमने कश्मीर में तैनात CRPF के IG उत्तुल करवाल से पूछा कि आखिर पापोर हमले में 2 चरमपंथियों को किसने मारा, तो उन्होंने कहा कि ये पूरा ऑपरेशन CRPF का था।
आपने पढ़ लिया है, आई विल रिट्रैक्ट दैट ट्वीट आल्सो, इट वाज CRPF ऑपरेशन।
अच्छा, इट वाज CRPF ऑपरेशन, हां?
यस यस, एब्सोल्युटली।
तहम सेना का कोई भी अधिकारी इस मामले पर कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। खबरों के अनुसार CRPF के अधिकारी इस पूरे मुद्दे को हमले की जांच कर रही कमेटी के साथ उठाएंगे। खबरों के अनुसार बताया ये भी जा रहा है कि दोनों हमलावरों को मारने के बाद उनसे बरामद किए गए हथियार भी सेना अपने साथ लेकर गई थी, जिनको कुछ घंटों के बाद सेना ने CRPF को वापस किया। इस मामले ने कश्मीर में तैनात सुरक्षा एजेंसियों के दरमियान आपसी तालमेल न होने की तस्वीर को दर्शाया है। गौरतलब है कि पापोर में बीती शनिवार को CRPF की कानवाई को चरमपंथियों ने निशाना बनाया था। हमले में CRPF के 8 जवान मारे गए थे, जबकि 28 के करीब जवान घायल हो गए थे। इस हमले की जिम्मेदारी चरमपंथी संगठन लश्कर ए तैयबा ने ली थी। माजिद जहांगीर, BBC न्यूज, श्रीनगर।
उत्तर प्रदेश में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव करीब पहुंच रहा है, सियासी गहमागहमी भी तेज होती जा रही है। वैसे तो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी सभी विपक्षी दलों के निशाने पर है, लेकिन उस पर ताज़ा और तीखा हमला कौमी एकता दल ने किया है। दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने समाजवादी पार्टी पर धोखा देने और BJP के साथ मिलकर राज्य में दंगे कराने का आरोप लगाया है। पिछले हफ्ते ही कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में प्रस्तावित विलय रद्द कर दिया गया था। लखनऊ से समीर आत्मज मिश्र की रिपोर्ट।
कौमी एकता दल के समाजवादी पार्टी में विलय के फैसले को खारिज करने के मामले में जहां सपा अध्यक्ष मुलायम सिंह के परिवार में तीखे मतभेद की खबरें हैं, वहीं कौमी एकता दल ने पार्टी पर धोखा देने का आरोप लगाया है। उत्तर प्रदेश के मऊ से विधायक मुख्तार अंसारी के भाई और पार्टी अध्यक्ष अफजाल अंसारी ने इस बारे में बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि राज्यसभा चुनाव में वोट लेने के लिए उनसे दोस्ती की गई और मतलब निकलने के बाद उनके साथ धोखा किया गया। BBC से बातचीत में अफजाल अंसारी ने कहा,
अपनी पार्टी के बिखरे हुए वोटों को समेटने में असफल होने पर इन्हें वोटों की दरकार थी, अतिरिक्त वोट कहाँ से आए। उस समय कौमी एकता दल को अप्रोच किया गया, उनके नेताओं से वार्ता हुई, बलराम यादव से बात हुई, शिवपाल सिंह यादव से मुलाकात बात हुई, फिर माननीय मुलायम सिंह यादव जी से मुलाकात और बात हुई, और तमाम बात हुई, ये भी बात हुई कि आप तो मेरी पार्टी से असेंबली का चुनाव लड़े हो, मेरी पार्टी से लोकसभा के लिए चुनाव लड़े और जीते हो, तो आप अपने घर में वापसी करा लो। बड़ी चुनौती है प्रदेश के सामने अगले चुनाव में।
समाजवादी पार्टी और उसके नेताओं पर वादा खिलाफी के अलावा अफजल अंसारी ने एक गंभीर आरोप ये लगाया कि केंद्र से मिलकर यूपी सरकार उत्तर प्रदेश में दंगे कराना चाहती है। लेकिन इस जानकारी के बावजूद उनकी पार्टी सपा के साथ क्यों जा रही थी, इस सवाल पर अफजल अंसारी का कहना था,
किसी भी बुराई को दूर से रखे तो नहीं उसको खत्म किया जा सकता। मैं इसमें आता तो मैं जरूर प्रयास करता, माननीय मुलायम सिंह यादव जी से कहता, मेरा व्यवस्था पे संचालन पे कोई अधिकार नहीं होता, लेकिन मेरी कोशिश होती कि ये रास्ता नहीं है, मुसलमानों को डरा करके वोट लेने का रास्ता ठीक नहीं है, हम लोग उनके बीच में चलेंगे। अभी जब आएगा त्योहारों का सीजन, खासतौर से जब दुर्गा पूजा, रामलीला और उसी दौरान का मुहर्रम, आप देख लीजिएगा क्या होना है उत्तर प्रदेश में, इसकी स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है।
अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी से सांसद रह चुके हैं और उसके बाद वो बहुजन समाज पार्टी से लोकसभा का चुनाव हार चुके हैं। उनके दो भाई मुख्तार अंसारी और सिबकतुल्ला अंसारी इस समय मऊ और गाजीपुर से विधायक हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल इलाके में इस परिवार और कौमी एकता दल का काफी प्रभाव बताया जाता है। अफजल अंसारी समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगा रहे हैं, लेकिन एक हफ्ते पहले ही उन्होंने पार्टी और मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की जमकर तारीफ की थी। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती की जमकर तारीफ की। ये अलग बात है कि मायावती ने मुख्तार अंसारी के बहाने यूपी सरकार पर निशाना साधा है और अखिलेश सरकार को गुंडों से गठजोड़ करने वाली सरकार करार दिया। जानकारों का कहना है कि अफजल अंसारी जो आरोप लगा रहे हैं, राजनीति में विपक्षी दल पर वैसे आरोप लगाना कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये सब जानते हुए भी दो दिन पहले तक वो उनके साथ जाने को तैयार थे। ऐसे में उनके आरोप कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आ जाते हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC लखनऊ।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
ये BBC है, आप दिन भर सुन रहे हैं रेहान फजल के साथ। 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों के बाद हजारों पीड़ित अब भी अपने घरों को नहीं लौट सके हैं। इनमें बहुमत मुसलमानों का है, वो खेमों में खानाबदोश की जिंदगी बसर कर रहे हैं। हमारे साथी जुबैर अहमद कैराना के निकट एक ऐसे ही खेमे में गए जहां बच्चे सरकारी स्कूलों के बजाय स्थानीय मदरसों में पढ़ने पर मजबूर हैं। उनकी ये रिपोर्ट कैराना के एक गांव से शुरू होती है।
कैराना बाईपास से मैं 10 किलोमीटर अंदर एक सड़क पर आया हूँ। रास्ते में कई गांव मुझे मिले, गांव में सभी घर मुझे पक्के मिले, अच्छे घर थे और खेतों में भी काफ़ी हरियाली थी, लेकिन कुछ ऐसे घर मिले जो कच्चे थे और दूर से ही लग रहा था कि इनकी हालत ठीक नहीं है। बिल्कुल एक एक कमरे का घर है और किसी की छत टूटी हुई है, किसी में छत है ही नहीं। तो जब मैं यहाँ आया तो हमें पता चला कि ये उन लोगों का घर है जो 2013 के दंगों में पीड़ित थे। अच्छा, आपका नाम क्या है?
शबाना है जी।
शबाना, और आप लोग किस गांव से यहाँ पर आए हैं?
हम सिसोली से आए हुए हैं।
इस बस्ती में कितने लोग हैं?
100 से तो ज्यादा, 150 होंगे।
यहाँ पर को तकरीबन 3 साल हो गए?
3 साल हो गया जी, चौथी साल लग जाएगी अब जी।
वापस सिसोली जाने का इरादा?
नहीं जी, हम नहीं जाएंगे।
क्यों नहीं जाएंगे?
नहीं जी, वहाँ का हालात बढ़िया नहीं है, हम वहाँ नहीं जाएंगे।
अभी भी हालात ठीक नहीं?
नहीं जी।
आप गए हैं?
हम गए थे, लेकिन वहाँ पे जाते हुए इंसान जो जाट लोग हैं वे गालियाँ देते हैं, तो जाके क्या करेंगे, यहाँ हम सेफ है।
कितने हैं आपके परिवार में?
हमारे परिवार में 9 आदमी है।
आपके पति हैं?
हाँ जी, पति।
आप हैं?
हाँ जी।
और
मेरे 3 बच्चे हैं, मम्मी है, डैडी है, भैया है, भाभी है, एक भैया और है।
पति आपके क्या करते हैं?
मेरे पति मजदूरी करते हैं।
स्कूल बच्चे जाते हैं आपके?
हाँ जी, हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं फिलहाल।
कौन से स्कूल?
यहीं पे अभी खुला है इस्लामिया मदरसा, स्कूल खुला है अभी, कुरान शरीफ पढ़ा हुआ है बच्चा मेरा। सरकारी में कोई सुविधा नहीं थी, इस वजह से हमने अपने बच्चे हटा लिए वहाँ से। वहाँ पे बच्चों को बच्चे मारते थे, इस वजह से हमने समझा सेफ हमारे बच्चे वैसे में रहेंगे। तो हमने
यहाँ पर जो क्या क्या पढ़ाते, क्या
जी? यहाँ पे उर्दू भी है, हिंदी, मैथ, इंग्लिश सब कुछ है।
शबाना के बच्चों के अलावा बस्ती के कई दूसरे बच्चे भी इस्लामिया पब्लिक स्कूल या स्थानीय मदरसों में पढ़ते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई गांवों और कस्बों में मुस्लिम समुदाय बहुमत में है। हमने लगभग हर गांव में मदरसे देखे, उन गांवों में भी जहां से मुसलमान दंगों के बाद पलायन कर चुके हैं। कई हिंदुओं का दावा है कि इन मदरसों के कारण मुसलमान कट्टर हुए हैं। सुरेंद्र सिंह बालियान कुडवी गांव के एक वरिष्ठ जाट किसान हैं। वो केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान के पिता भी हैं। वो मदरसों से चिंतित हैं।
ये जो हुआ ना, ये सब धार्मिक कट्टरता से, कपड़ों से या पहनने रहने से, कि हम मुसलमान हैं या हिंदू हैं। लेकिन जब से यहाँ तावल में एक मदरसा बना, जब से ही गोल टोपी, नीचे कुर्ते, ऊंचे पजामे, एक पहचान बन गई, ये मुस्लिम है, हम हिंदू। जब से मदरसे वाले हैं, इन्होंने पीठ पीठक नमाज पढ़ो, मतलब ये कट्टरता भर दी उनके।
इसी तरह के हुलिये वाले हमें एक मदरसे में कई लोग नजर आए। मदरसा फतहुल उलूम बंद था, लेकिन इसके बावजूद कई बच्चे और शिक्षक वहाँ मौजूद थे।
मैं BBC से आया हूँ। कुछ लोगों ने कहा कि भाई पहले के मुसलमान बहुत अच्छे थे, अभी जो जब से मदरसे वगैरह खुलने लगे हैं, ये सब गड़बड़ शुरू हो गए, कट्टरवादी हो गए हैं। आपका नाम क्या है?
मेरा नाम महफूज़ुर्रहमान।
महफूज़ुर्रहमान
जी,
तो ये बताइए कि यहाँ पे इसके अलावा क्या तालीम हासिल की आपने?
मौलवत का पहले साल की तालीम हासिल की थी यहाँ पे।
तो यहाँ से पढ़ के आप क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे?
यहाँ से पढ़ कर हम देवबन जाएंगे सीधे।
और वहाँ से तालीम हासिल करके फिर क्या करेंगे?
बस फिर तो यही दीन की खिदमत करेंगे।
मस्जिद में मौलवी बन जाएंगे, ये नमाज़ पढ़ाएंगे या अजान देंगे या क्या करेंगे?
मदरसों में पढ़ाएंगे।
मदरसों में पढ़ाएंगे
जी।
लोग बोलते हैं ना कि मदरसों में पढ़ के लोग कट्टरवादी होते जा रहे हैं,
बारे में नहीं मालूम है।
आप बता सकते हैं जी? आप अपना नाम बता दीजिए।
मोहम्मद कुर्बान, मैं यहाँ पे पढ़ाता हूँ।
अच्छा, आप पढ़ाते हैं, सॉरी। ये जो इल्ज़ाम तराशी है, उसका जवाब क्या है?
इल्ज़ाम तराशी मतलब?
मतलब ये कि ये लोग कह रहे हैं, हिंदू भाइयों से जब मैंने बात की कुछ गांव में
जी।
वो ये कहते हैं कि जी सारा माहौल सही था यहाँ पर, पहले हिंदू मुस्लिम मिल के रहते थे, और अब जो है मुसलमानों में कट्टरपन आ गया है, और उसकी वजह है ये सब मदरसे जो खुल गए इतने हर गाँव में। ये
मदरसा तो एक ऐसी चीज़ है कि सबको सही लाइन पर लाने के लिए, और यानी कि सीधे रास्ते, कट्टरपंथी कोई मदरसे में नहीं रहता है। मदरसे वाले का दिल इतना नरम होता है कि किसी का दिल इतना नरम नहीं होता है।
ये इनका हुलिया देखिए, इसी तरह के लोगों के बारे बताते हैं कि भाई ये पता नहीं क्या इस्लाम फैला रहा है या हमें भी कन्वर्ट कर देगा या क्या, इस तरह के जो उनके तासुरात हो रहे हैं।
मदरसा तालीम के लिए अच्छी चीज़ है, हमारे मजहब में मदरसे के लिए बहुत ज़रूरी है मदरसा हमारे इसमें। और दूसरी बात यह है कि वो जो मदरसा वो स्कूल चलाते हैं, वो कॉलेज चलाते हैं, उनमें भी तो वो भी कुछ सिखाते होंगे ना अपने मजहब के लिए, वो भी तो कुछ बतलाते होंगे। हम भी इसीलिए अपने मजहब के लिए अपने बच्चों को अच्छी तालीम देते हैं, अच्छा कुछ सिखाते हैं।
शबाना के बच्चे इसी तरह के मदरसे में जाते हैं। वो बोलने में जितनी तेज हैं, अपने बच्चों के भविष्य को लेकर उतना ही उत्साहित और महत्वाकांक्षी। शबाना के बच्चों का भविष्य इसी तरह के मदरसों की पढ़ाई पर टिका है। ज़ुबैर अहमद, BBC कैराना।
10 महीने पहले ही ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके अर्जुन पुरस्कार विजेता तीरंदाज मंगल सिंह चांपिया दोबारा हुए ट्रायल में पिछड़ गए हैं। उनकी जगह टाटा आर्चरी अकादमी के अथानु दास को रियो का टिकट मिला है। मंगल सिंह चांपिया इस कारण नाराज हैं। झारखंड के खेल प्रेमियों में भी इसको लेकर नाराजगी है। रांची से रवि प्रकाश की रिपोर्ट।
मंगल सिंह चांपिया अगर रियो जाते तो ये म्यूजिक उनका स्वागत करता। अफसोस, उनके ओलंपिक जाने का सपना अब टूट चुका है। बेंगलुरु में इंडिविजुअल कैटेगरी के लिए दोबारा हुए ट्रायल में वे पिछड़ गए। उनकी जगह पश्चिम बंगाल के अतानु दास को सिलेक्ट कर लिया गया। जब ट्रायल हुआ तब चांपिया की तबीयत खराब थी, इस कारण वे अपना ध्यान एकाग्र नहीं कर पा रहे थे। इधर अतानु दास ने बोनस पॉइंट के सहयोग से बाजी मार ली। ऐसे में मंगल सिंह चांपिया का सपना एक झटके में टूट गया। BBC से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारतीय तीरंदाजी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुके किसी तीरंदाज को दोबारा ट्रायल देना पड़ा हो। मंगल सिंह चांपिया ने कहा,
जो क्वालिफाई करता था इंडिविजुअल में तो उनको लास्ट तक टीम में सेव करके रखते थे और फिक्स रहते थे। उनको जो इंडिविजुअल क्वालिफाई थी उसको कुछ हो जाता, बीमार उमार या फिर कुछ एक्सीडेंट वगैरह, तभी उस जगह पर जो बाकी प्लेयर टॉप प्लेयर है उनके बीच में सिलेक्शन खेल होता है और उनमें से एक प्लेयर को इंडिविजुअल के लिए सिलेक्ट किया जाता है। और इस बार क्या हुआ, अगर मैंने इंडिविजुअल क्वालिफाई किया था तो कम से कम मुझे लास्ट तक टॉप फोर में फिक्स कर देना चाहिए।
मंगल सिंह चांपिया झारखंड के अति पिछड़े झींक पानी के रहने वाले हैं। यह इलाका हो आदिवासियों का है। चांपिया से उनकी काफी उम्मीदें थी। क्या आदिवासी होने के कारण उनसे भेदभाव किया गया? चांपिया कहते हैं मैं यह नहीं जानता, लेकिन मुझे झारखंड की सरकार का सपोर्ट नहीं मिला। मंगल सिंह चांपिया ने कहा,
हरियाणा में देखिए, कर्नाटक में, दिल्ली में, पंजाब उंजाब में, जो कई तरफ देखिए, और हम लोग यहाँ पे जैसे मैं जिम्मेवारी हूँ, तो दो बार ओलंपिक इंडिविजुअल क्वालिफाई कर लिया और वर्ल्ड रिकॉर्ड के बराबर कर लिया, और फिर बहुत सारा अचीवमेंट मेरा, कम से कम 5 इंटरनेशनल मेडल है ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप सब छोड़ करके, बाकी सब गेम में है मेडल। तो ऐसे होने से मुझे गवर्नमेंट से या सीएम होम से या सपोर्ट तो मुझे बराबर मिलना चाहिए अगर मैं दूसरे स्टेट में होता था।
आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यह नहीं बता पा रहा कि ओलंपिक जाने के लिए पहले से तय नियमों में संशोधन क्यों किया गया। आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया के जनरल सेक्रेटरी अनिल कमिनेनी ने बीबीसी से कहा कि यह सच है कि मंगल सिंह चांपिया का चयन रियो के लिए 10 महीने पहले ही हुआ था, लेकिन दिसंबर 2015 में चेन्नई में संपन्न एसोसिएशन की बैठक के दौरान तय किया गया कि व्यक्तिगत स्पर्धा के लिए अलग से ट्रायल होगा। हमने उसी निर्णय के तहत उनका दोबारा ट्रायल कराया। AAI के कार्यकारी अध्यक्ष सरदार त्रिलोचन सिंह ने भी यही बात कही। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें अपना बेस्ट भेजना था क्योंकि हमारा ध्यान मेडल पर है, इंडिविजुअल पर नहीं। मंगल सिंह चांपिया ने 10 महीने पहले ट्रायल दिया था, उस आधार पर उन्हें भेजना उचित नहीं होता। बहरहाल अब भारतीय पुरुष तीरंदाजी की उम्मीदें आतानुदास पर टिक गई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि रियो ओलंपिक में भारतीय खिलाड़ी कितने मेडल आते हैं और इन मेडलों में पुरुष तीरंदाजी की कोई हिस्सेदारी होती है या नहीं। रवि प्रकाश, BBC रांची।
और अब जिक्र विंबलडन का। रॉजर फेडरर अपने पहले राउंड का मैच जीतकर दूसरे राउंड में पहुंच गए हैं, जबकि गार्बिन मुरुगुजा को पहले राउंड में कड़े मुकाबले का सामना करना पड़ा है। आज भी कई दिलचस्प मुकाबले होने हैं। आइए कार्यक्रम में शामिल करते हैं आदेश कुमार गुप्त को। बताइए क्या खबरें हैं विंबलडन से।
जी रेहान, विंबलडन में आज भी पहले दौर के मुकाबले जारी हैं। आज सबसे पहला परिणाम पुरुष एकल वर्ग में 7वीं वरीयता हासिल फ्रांस के रिचर्ड गैस्के की जीत के रूप में सामने आया, जब उन्होंने गैर वरीयता हासिल ब्रिटेन के अल्जाज बेदेने को 6-3, 6-4, 6-3 से मात दी। महिला एकल वर्ग में भी पहले दौर के मुकाबले जारी हैं, जहाँ अमरीका की क्रिस्टीना मकाले ने स्लोवाकिया की जानी मानी खिलाड़ी डेनियला हंतुचुआ को थोड़े संघर्ष के बाद 7-5, 6-2 से हराया। अन्य मुकाबलों में चीन के यिंग यिंग दुआन ने चेक गणराज्य की क्रिस्टीना प्लिस्कुवा को 6-3, 3-6, 7-5 से। 19वीं वरीयता हासिल स्लोवाकिया की डोमिनिका चिबुलकुवा ने क्रोएशिया की मिर्जाना लुसिस पारोनी को 7-5, 6-3 से, और ऑस्ट्रेलिया की दारिया गावरिलोवा ने चीन की कियांग वांग को 2-6, 6-3, 6-4 से हराया। महिला एकल वर्ग में ही आज शीर्ष वरीयता हासिल अमेरिका की सेरेना विलियम्स स्विट्जरलैंड की आमरा सदिकोवा से, छठी वरीयता हासिल इटली की रॉबर्टा विंसी अमेरिका की एलिसन रिस्के से 2-2 हाथ करेंगी। विंबलडन में आज पुरुष एकल वर्ग में दूसरी वरीयता हासिल ब्रिटेन के एंडी मरे, चौथी वरीयता हासिल स्विट्जरलैंड की स्टेन वावरिंका और 8वीं वरीयता हासिल ऑस्ट्रिया के डोमिनिक थीम भी अपना दावा पेश कर रहे हैं। उधर यूरो का फुटबॉल टूर्नामेंट में कल इटली ने स्पेन को 2-0 से मात दी। आज क्वार्टर फाइनल में उनका सामना, इटली का सामना जर्मनी से होगा, लेकिन यूरो कप के अन्य मुकाबले में कल आइसलैंड ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। अब आइसलैंड क्वार्टर फाइनल में फ्रांस का सामना करेगा। यूरो कप में पहला क्वार्टर फाइनल गुरुवार को पोलैंड से और पुर्तगाल के बीच खेला जाएगा। इसके अलावा क्वार्टर फाइनल में अन्य दो टीमें वेल्स और बेल्जियम है, जो शुक्रवार को दूसरे क्वार्टर फाइनल में भिड़ेंगी। और उधर आज से कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के मुकाबले शुरू होने जा रहे हैं, जहां पुरुष एकल वर्ग में भारत के RMV गुरुसाई दत्त, प्रतुल जोशी और हर्षील दानी अपना दावा पेश करेंगे, लेकिन नजरें रहेंगी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी पर कि ओलंपिक से पहले उनमें कितना दमखम है।
बहुत बहुत धन्यवाद आदेश आपका। और चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर।
BBC समाचार। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि ब्रिटेन के लोगों को यूरोप को अपनी पीठ नहीं दिखानी चाहिए। वे ब्रसल्स में यूरोपीय नेताओं की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। लेबनान की सेना का कहना है कि सीरिया की सीमा के नज़दीक हुए श्रृंखलाबद्ध हमलों के बाद 100 से ज्यादा लोगों को पकड़ लिया गया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के प्रवक्ता ने तुर्की की माफी को दोनों देशों के रिश्तों के लिए अहम बताया है। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने पुलिस बल में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न के मामले सामने आने के बाद जांच के आदेश दे दिए हैं। BBC समाचार।
दिन भर को यहीं विराम देते हैं। ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाने में मदद कर रहे थे तिलक राज भाटिया, रेहान फजल को सभी साथियों के साथ इजाजत दीजिए। नमस्कार।